लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे पीड़ित बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो बेघर, अनाथ और युद्धों के शिकार हैं, ताकि उन्हें शिक्षा तक पहुंच की गारंटी और पारिवारिक स्नेह का अनुभव करने का अवसर दिया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हर मानव का जीवन अपने में मुक्ति विधान का एक इतिहास है। अपने मुक्ति विधान के इतिहास में हम में से हर कोई स्वयं अपनी मुक्ति की कहानी लिखते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन में हम जैसा व्यवहार करते, जिस तरह का कार्य करते और जैसे एक दूसरे के संग पेश आते, हमारे लिए मुक्ति इतिहास की एक पट कथा बनती है। हम अपने व्यवहार में स्वयं अपने को आदम और हेवा बनाते हैं। अपने दिनचर्या में हम जिस तरह के कार्यों को पूरा करते, हमारे लिए वे कार्य हमें या तो काइन बनाते या हमें हाबिल घोषित करते हैं। वहीं हमारा दैनिक व्यवहार और हमारे जीवन जीने का तरीका हमें ईश्वर में बुलाए गए अब्राहम या मूसा होने में मदद करता है। इस भांति हम जो कुछ भी करते, वह हमारे मुक्ति इतिहास की एक गाथा बनती है। हमारे द्वारा किए गए कार्य और जिया गया जीवन ही स्वयं हमारी मुक्ति का कारण बनती है। इस भांति देखा जाए तो हर मानव स्वयं अपने भौतिक जीवन के कार्यों द्वारा अपने लिए मुक्ति का मार्ग तैयार करता है। हम में से हर कोई ईश्वर प्रदत्त स्वतंत्रता में स्वयं अपने लिए जीवन या मृत्यु का चुनाव करते हैं। हम सभी स्वयं अपनी मुक्ति के जिम्मेदार होते हैं। श्रोताओ, अपने जीवन के अतीत को याद करना और उसे मुड़कर देखना, इस तरह हमारे लिए ईश्वरीय अनुकंपा के क्षण होते हैं, जो हमें अपने वर्तमान को बेहतर करने में मदद करते हैं, क्योंकि अतीत को निहारना हमें कृतज्ञता के भाव से भर देता है। आगमन का काल, जिसकी शुरुआत हम आज से करते हैं, हमें अपने जीवन का पुनरालोकन करने का निमंत्रण देता है। आइए हम आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार पाठ का श्रवण करते हुए अपनी आत्म परख करें। क्या प्रभु का दिन, जो हमारे लिए किसी घड़ी आ सकता है, हम इसके लिए अपने को तैयार पाते हैं?
जो नूह के दिनों में हुआ था, वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। जल प्रलय के पहले नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते थे। जब तक जल प्रलय नहीं आया और उसने सब कुछ बहा नहीं दिया, तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। उस समय दो पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा।
श्रोताओं, मानव के रूप में हमें यह जीवन बिना मांगे दिया गया है, और यह जीवन हमारी चाह और इच्छा के विरुद्ध हमसे ले लिया जाएगा। इसके पहले कि हमारे साथ यह हो, सुसमाचार के ईश वचन हमें उसके लिए तैयार रहने का निमंत्रण देते हैं कि हम जागते रहें और अपने को तैयार रखें। श्रोताओं, नबी इसायस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए ईश्वर के दिव्य मंदिर का जिक्र करता है जो पर्वत और पहाड़ों से ऊंचा होगा, जहां असंख्य लोग जमा होंगे। ईश्वर वहां राष्ट्रों के बीच न्याय स्थापित करेगा। यह हमारा ध्यान ईश्वर के दिव्य निवास की ओर कराता है जिसके लिए हम सभी बनाए गए हैं। श्रोताओं, आज हम सबों को ईश्वर के उस दिव्य मंदिर में प्रवेश करना, पर्वत की उस ऊंचाई की ओर जाने का एक निमंत्रण दिया जाता है। इस दुनिया का भौतिक जीवन हमारे लिए उस दिव्य ईश मंदिर में निवास करने हेतु तैयारी का एक समय है, जहां हम ईश्वर के सदृश गढ़े गए और उनके प्रेमपूर्ण जीवन को दुनिया के सभी प्राणियों के संग, सारी सृष्टि के संग साझा करने हेतु भेजे गए हैं। ईश्वर के मंदिर में जाने का बुलावा हमें उनकी बातों को सुनने और उनके द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार जीवन यापन की बात कहती है, क्योंकि ईश मंदिर में ईश्वरीय वाणी हमारे लिए घोषित की जाती है। ईश्वर के मंदिर, उनके पर्वत पर जाना हमें सदैव आनंद से भरता है, क्योंकि उस पवित्र स्थल से हम अपने लिए ईश्वर के संजीवन जल को बहता हुआ पाते हैं, जो हमारे जीवन की सूखी भूमि को हरियाली में बदल देता और हमें सदैव हरा भरा बने रहने में मदद करता है। श्रोताओं, ईश्वर के घर में उनकी उपस्थिति में रहना, उन्हें अपने जीवन में आलिंगन करना हमारे हिंसक व्यवहार का दमन करता और हमें शांति से भर देता है, जहां हम अपने विनाशकारी हथियारों को उपयोगी कार्य के औजारों में बदल लेते हैं। यह हमारे बीच से युद्ध और द्वंद्व के कारण होने वाली हिंसात्मक बातों को समाप्त करती है, क्योंकि शांति के नायक अपने अनुयायियों को शांति के शिल्पकार होने की कृपा प्रदान करते हैं। श्रोताओं, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र हमें ईश्वर के निवास में आने हेतु जागने का आह्वान करता है। वे हमें अपने निंद्रा से उठते हुए प्रकाश में आने की बात कहते हैं, अंधेरे से निकलकर ज्योति में आने को कहते हैं। वे हमें मसीह को धारण करने और उनके अनुरूप सदाचरण करने की चुनौती देते हैं। नींद से जागने का तात्पर्य हमारे लिए स्वयं का आत्म परीक्षण करना है। यह हमें अपने जीवन के कार्यों, अपने व्यवहार, आचरण और दूसरों के संग अपने पेश आने के तौर तरीकों को देखना और उनमें परिवर्तन लाने का आह्वान है। श्रोताओं, मानव के रूप में हमारे जीवन में परिवर्तन बहुधा इसीलिए नहीं आता क्योंकि हम अपने जीवन को झांक कर नहीं देखते हैं। हम अपने हृदय की गहराई में नहीं उतरते और इस भांति पवित्र आत्मा की ओर से आने वाली आवाज को हम सुनने में असक्षम होते हैं, जो हमें बुराइयों का परित्याग करने का निमंत्रण देते हैं। अपने स्वार्थ के कारण हम अपने ही मौज मस्ती और आनंद में खोए रहते हैं, जैसे कि नूह के जल प्रलय के समय में हुआ। श्रोताओं, आगमन का काल जिसमें आज हम प्रवेश करते हैं, कलीसिया हमारे लिए तैयारी का एक समय प्रदान करती है, जहां हम अपने मुक्तिदाता यीशु के स्वागत अपने को तैयार करने हेतु बुलाए जाते हैं। हम नहीं जानते कि वे हमारे लिए कब, कैसे, कहां और किस रूप में आएंगे, अतः कलीसिया हमें सदैव तैयार रहने को आगाह करती है। आज हमें जागते रहने का संदेश दिया जाता है। आइए हम मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि वे हमें अपनी कृपा से भर दें, जिससे हम अपने जीवन की छोटी बड़ी कमजोरियों पर विजयी प्राप्त कर सकें, जो हमें ढीला ढाला बना देते, जिसके फलस्वरूप हम अपने जीवन को निष्क्रिय रूप में जीने लगते हैं। माता मरियम हमारी मदद करें, जिससे हम उनके बेटे के आने की तैयारी में अपने को सदैव तत्पर बनाए रखें।
वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार सुबह इटली के केंद्रीय अपराध विरोधी निदेशालय के सदस्यों से मुलाकात की। वाटिकन में उनका स्वागत करते हुए संत पापा ने परिचय भाषण के लिए निदेशालय प्रमुख को धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रोत्साहित महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ठीक बाद आपसे मिलते हुए मुझे खुशी हो रही है। इस वर्ष का विषय महिलाओं और लड़कियों को हिंसा के विभिन्न रूपों से मुक्त करने के संघर्ष में एकजुट होने का आह्वान है। संत पापा ने उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि दुर्भाग्य से खबरें लगातार हमें महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा की खबरें लाती हैं और आप इस दर्दनाक वास्तविकता का मुकाबला करने के लिए एक संस्थागत संदर्भ बिंदु है। आपके बीच कई महिलाएं हैं जो अन्य महिलाओं की मदद करती हैं, जो उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकती हैं, उन्हें सुन सकती हैं, उनका समर्थन कर सकती हैं। इस काम के लिए एक लक्षित मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तैयारी जरूरी है, क्योंकि केवल एक गहरे स्तर पर ही कोई ऐसी शांति पा सकता है और उसे बनाए रख सकता है जो क्रूर हिंसा के शिकार लोगों में विश्वास को प्रसारित करने की अनुमति देता है। वह आंतरिक शक्ति जो यीशु मसीह हमें अपने दुख भोग में दिखाते हैं और जिसे हम शहीद संत अगाथा, संत लूसिया, संत मरिया गोरेती और सिस्टर मरिया लौरा मेनेत्ती में पाते हैं। हमारी बैठक महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की ओर ध्यान आकर्षित करती है, जो हमें एक साथ महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा से लड़ने के लिए एकजुट होने का आह्वान करती है। कानून प्रवर्तन और आवश्यक दमनकारी कार्यवाहियां पर्याप्त नहीं है। हमें एकजुट होने, सहयोग करने, नेटवर्क बनाने की आवश्यकता है और न केवल एक रक्षात्मक नेटवर्क बल्कि सबसे बढ़कर एक निवारक नेटवर्क। यह हमेशा निर्णायक होता है जब एक सामाजिक संकट को खत्म करने की कोशिश की जाती है जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण, मानसिकता और गहरी जड़ों वाले पूर्वाग्रहों से भी जुड़ा होता है। और संत पापा फ्रांसिस ने सुपीरियर जनरलों के संघ की आम सभा के समापन पर उन्हें संबोधित करते हुए इस बात पर चिंतन किया कि एक शांति दूत होने का अर्थ क्या है और उन्होंने धर्म सभा को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। युद्ध और विभाजन से विभाजित दुनिया में शांति दूत बनना एक विशेष रूप से जरूरी आह्वान है। संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार की सुबह वाटिकन में एकत्रित हुए धर्मसंघियों से कहा, यह प्रत्येक और सभी की जिम्मेदारी है। यूनियन ऑफ सुपीरियर जनरल की आम सभा जो अभी अभी समाप्त हुई की विषय वस्तु थी, आप शांति के शिल्पकार बनने के लिए बुलाए गए हैं, और यह विश्व पत्र फ्रतेली तुत्ती के चिंतन पर आधारित था। संत पापा ने उस शांति के बारे में बात की जो यीशु देते हैं और यह दुनिया की शांति से कैसे अलग है। उन्होंने कहा, ऐसे समय में जब हम शांति शब्द सुनते हैं तो हम मुख्य रूप से युद्ध रहित या युद्ध के अंत की स्थिति, शांति और कल्याण की स्थिति के बारे में सोचते हैं। यह इब्रानी शब्द शालोम के अर्थ से पूरी तरह से मेल नहीं खाता, जिसका बाइबल के संदर्भ में एक समृद्ध अर्थ है। संत पापा ने कहा कि यीशु की शांति सबसे पहले उनका उपहार दया का फल है। यह कभी भी मनुष्य की विजय नहीं है, यह ईश्वर के साथ, स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और सृष्टि के साथ सामंजस्यपूर्ण संपूर्ण संबंध का हिस्सा है। शांति ईश्वर की दया, क्षमा और परोपकार का अनुभव है, जो हमें दया, क्षमा और सभी प्रकार की हिंसा और उत्पीड़न को अस्वीकार करने में सक्षम बनाती है। यही कारण है कि उपहार के रूप में ईश्वर की शांति को हम शांति के निर्माता और शांति का साक्ष्य देने से अलग नहीं कर सकते। यह मानव व्यक्ति की गरिमा की मान्यता पर स्थापित है। संत पापा ने धर्मसंघियों को शांति के शिल्पकार के स्वामी बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, एक कला का अभ्यास जुनून, धैर्य, अनुभव और तप के साथ किया जाता है, क्योंकि यह एक प्रक्रिया है जो समय के साथ चलती है। संत पापा ने कहा कि यह एक औद्योगिक उत्पाद नहीं है जिसे यंत्रवत हासिल किया जाए, लेकिन मनुष्य के कुशल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। शांति प्रत्येक और सभी की जिम्मेदारी है। और संत पापा फ्रांसिस ने एक जर्मन बेघर बुखार्ड शेफलर के लिए प्रार्थना की, जिसकी संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण के पास एक ठंडी रात में मृत्यु हो गई। पत्रकारों के सवालों के जवाब में वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मतेओ ब्रूनी ने कहा, दुख के साथ संत पापा फ्रांसिस को कल रात संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण के पास बर्कहोल्ड शेफलर की मृत्यु के बारे में पता चला। श्री शेफलर का जन्म 1961 में जर्मनी में हुआ था। वे रोम की सड़कों पर रहते थे। उनकी देखभाल उदार सेवा के लिए गठित परम धर्म पीठीय विभाग के दान और सहायता प्रयासों द्वारा की जाती थी। अपनी प्रार्थना में संत पापा फ्रांसिस ने बर्कहार्ड और उन सभी लोगों को याद किया जो रोम और दुनिया भर में बिना घर के रहने के लिए मजबूर हैं। संत पापा ने विश्वासियों से अपने साथ जुड़ने और प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया। उधर पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश में 2019 के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों में भाग लेने वालों की सहायता करने के लिए स्थापित अब विघटित निधि में उनकी भूमिका के लिए हांगकांग के सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष कार्डिनल जोसेफ जेन पर $512 का जुर्माना लगाया गया। 90 वर्षीय कार्डिनल को 5 अन्य प्रशासकों के साथ 612 मानवतावादी राहत कोष पंजीकृत करने में विफल रहने के लिए दोषी पाया गया। राहत कोष गिरफ्तार लोगों को अधिकारियों के लिए कानूनी और चिकित्सा शुल्क का भुगतान करने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था। उधर कैथोलिक कलीसिया की पूजन धर्म विधि अनुसार वर्ष के पहले रविवार यानी 19 नवंबर को कलीसिया आगमन काल की शुरुआत करती है। इसके संदर्भ में संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट कर सभी विश्वासियों को प्रभु के स्वागत में विश्वास का दीपक जलाए रखने के लिए प्रभु से कृपा मांगने हेतु प्रेरित किया। ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, इस आगमन काल के दौरान आइए हम प्रभु से हमारे जीवन में विश्वास के दीपक को जलाए रखने में मदद करने हेतु कृपा मांगें। हम प्रभु का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। प्रभु हमें शांति और आनंद से भर दें। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।